ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं सीमा शर्मा। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। काठमांडू की सभी अस्पतालों को कोविड अस्पताल के रूप में संचालित करने का स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया निर्णय। आज देशभर में 4047 कोरोना संक्रमण के नए मामले आए सामने। 9 संक्रमितों की हुई मौत। 1473 हुए संक्रमण मुक्त। हुमला की उत्तरी नामखा गांव पालिका में खाद्यान्न संकट और विश्वभर में कोरोना वायरस के कारण मरने वालों की संख्या पहुंची 10,83,000 से अधिक। अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने काठमांडू घाटी की सभी सरकारी अस्पतालों को कोविड अस्पताल के रूप में संचालित करने का निर्णय लिया है। नियमित प्रेस ब्रीफिंग में मंत्रालय के प्रवक्ता प्राध्यापक डॉ जागेश्वर गौतम ने ये जानकारी दी। साथ ही प्राध्यापक डॉ गौतम ने बताया कि घाटी के अंदर लोगों की आवाजाही को घटाने, कार्यालय का समय और दिन घटाने, लक्षण दिख रहे लोगों को छुट्टी देने, व्यापार व्यवसाय को खोलने और संचालित करने का समय और स्वरूप में परिवर्तन करने और घाटी में किसी भी तरह का सेमिनार, गोष्ठी, बैठक आदि न करने का निर्णय किया गया है। इसके साथ ही इमरजेंसी के अलावा अन्य सभी तरह की शल्य क्रियाओं को न करने का निर्देश अस्पतालों को किया गया है। इसके अलावा मंत्रालय ने सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक यातायात तथा जिम्मेदार निकायों को कोरोना संक्रमण जोखिम न्यूनीकरण के लिए अपनी भूमिका को निर्वाह करने का आग्रह किया है। साथ ही जिम्मेदार निकायों के द्वारा जनसंख्या द्वारा निर्देशित मापदंडों का पालना न करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करने का निर्देश किया गया है। आज देश भर में 4047 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही देश भर में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,11,802 पहुंच गई है। इसी तरह आज 1,473 लोग कोरोना संक्रमण मुक्त हुए हैं। इसके साथ ही देश भर में कोरोना संक्रमण मुक्त होने वालों की कुल संख्या 77,277 हो गई है। आज ही 9 लोगों की मृत्यु होने के बाद कोरोना संक्रमण के बाद मरने वालों की संख्या 645 हो गई है। इसी तरह अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 33,880 हो गई है। इनमें से 19,957 होम आइसोलेशन में है, 13,923 लोग संस्थागत आइसोलेशन में है, 279 लोग आईसीयू में भर्ती हैं, जबकि 69 संक्रमितों को वेंटिलेटर में रखा गया है। ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय की नियमित प्रेस ब्रीफिंग में मंत्रालय के प्रवक्ता प्राध्यापक डॉ जागेश्वर गौतम ने दी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ऐतिहासिक नेपाल भ्रमण के एक वर्ष पूरा होने के संदर्भ में नेपाल चीन मीडिया फोरम द्वारा प्रकाशित पुस्तक प्रेसिडेंट शी जिनपिंग्स नेपाल विजिट अ पिक्टोरियल गाइड आज सार्वजनिक की गई। फोरम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल ने पुस्तक सार्वजनिक के दौरान कहा कि चीन के साथ किए गए समझौते को कागजी रूप में मात्र न होकर व्यवहारिक रूप में भी अपनाने की बात पर जोर दिया। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री पार्वत गुरुंग ने कहा कि देश के समृद्धि में योगदान पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार ने सामाजिक उद्यमशीलता कोष स्थापना किया है। आज समाज कल्याण परिषद द्वारा काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि परिषद के मातहत में रहने के हिसाब से कोष का स्थापना किया गया है। गंडकी प्रदेश सभा की आज की बैठक ने गंडकी प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्धन संबंध में व्यवस्था करने के विधेयक को पारित किया गया है। बैठक में भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मंत्री लेख बहादुर थापा ने विधायन समिति के प्रतिवेदन सहित विधेयक किए जाने के विषय के प्रस्ताव को सभा ने सर्वसम्मति से पारित किया है। इससे पहले विधेयक के विषय में विचार विमर्श में सहभागी प्रदेश सभा सदस्यों ने निर्वाह मुखी कृषि प्रणाली को परिवर्तन कर आधुनिकीकरण के माध्यम से उत्पादन और उत्पादकत्व वृद्धि के साथ ही इसके बाजारीकरण के लिए विधेयक को महत्वपूर्ण बताया है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब वक्त है व्यावसायिक विश्राम का।
ल्यान्डलाइन फोनमा समस्या छ
1498 फोन गर्नुस्।
समस्या पोस्टपेडमा नि आयो
1498 फोन गर्नुस्।
ओहो सम्झे, प्रिपेड को पुक नम्बर पनि चाहिए थियो,
त्यसको लागि पनि 1498 मै फोन गर्नुस्।
नेपाल टेलिकम को जीएसएम सीडीएमए मोबाइल तथा ल्यान्डलाइन मा कुनै पनि समस्या आएमा जे सोध्न मन छ 1498 मा फोन गरेर सोध्नुहोस्। यो नम्बर मा फोन गर्दा पैसा लाग्दैन।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। कोरोना वायरस की महामारी के पश्चात चीन से सटी सीमा नाकों के बंद होने पर हुमला की उत्तरी नामखा गांव पालिका में खाद्यान्न संकट की स्थिति बनी है। सीमा नाकों के बंद होने के बाद नामखा गांव पालिका के नागरिकों को खाद्य वस्तु के बिक्री करते आ रहे व्यापारियों को 7 महीनों से खाद्यान्न का कारोबार नहीं कर पाए हैं। व्यापारियों द्वारा खाद्यान्न न भेजे जाने के कारण नामखा 6 लिमी का तील जांग हल्जी गांव में खाद्यान्न का संकट दिखा है। सुदूर पश्चिम प्रदेश के पहाड़ी जिलों में रहे सबसे पुराने जिले दीपायल विमानस्थल में इसी असोज 30 गत्ते से हफ्ते में एक दिन हवाई उड़ान को संचालित किया जाएगा। दीपायल धनगढ़ी के लिए प्रत्येक शुक्रवार उड़ान भरी जाएगी, ये जानकारी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने दी। जुमला सदर मुकाम खलंगा से डोल्पा को जोड़ने वाली पुल का निर्माण होने के बाद अब औपचारिक रूप में ही जुमला से डोल्पा जुड़ गई है। इस पुल के निर्माण से जिला के पर्यटकीय क्षेत्र गुठीचौर चोत्रा होते हुए डोल्पा की दूरने से फुकसुंडो की यात्रा में सहजता आएगी। इससे पहले डोल्पा जुमला में दैनिक उपभोग्य सामान को खच्चर ढोते थे, लेकिन इस पुल के निर्माण से सामान ढोने में काफी सहज हो जाएगी। सिद्धार्थ राजमार्ग की विभिन्न स्थानों में भूस्खलन के कारण अवरुद्ध रास्ते की मरम्मत करने के लिए आज से दैनिक 3 घंटों के लिए सड़क को बंद किया जाएगा। सुबह 6 बजे से 9 बजे तक सिद्धार्थ राजमार्ग में काम किया जाएगा और यह मरम्मत का कार्य आश्विन 29 गते तक किया जाएगा, ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय पालपा के सूचना अधिकारी मदन गिरी ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 3,78,95,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 2,84,61,000 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। वहीं 10,83,000 से अधिक लोगों की जानें भी चली गई है। कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित देशों में अमेरिका सबसे पहले स्थान पर है, जहां 80 लाख से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 2,19,000 से अधिक की मौत हो चुकी है। इसी तरह भारत में 71,60,000 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 1,09,000 से अधिक की मौत हो चुकी है। इसी तरह ब्राजील में 50,94,000 संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 1,50,000 से अधिक की वहां पर मौत हो चुकी है। इसी तरह रूस में 13,12,000 से अधिक संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 22,000 से अधिक की मौत हो चुकी है। और कोलंबिया में 9,11,000 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 27,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.8 और न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर। काठमांडू की सभी अस्पतालों को कोविड अस्पताल के रूप में संचालित करने का स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया निर्णय। आज देशभर में 4,047 कोरोना संक्रमण के नए मामले आए सामने, 9 संक्रमितों की हुई मौत, 1,473 हुए संक्रमण मुक्त, हुमला की उत्तरी नामखा गांव पालिका में खाद्यान्न संकट और विश्वभर में कोरोना वायरस के कारण मरने वालों की संख्या पहुंची 10,83,000 से अधिक। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से कल तक के लिए दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभ रात्रि।